संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बारह भावनाओं के चिंतन प्रक्रिया की बात चल रही है, जिसमें अनित्य भावना, आश्रम, संसार, एकत्व और अन्यत्व भावना के बारे में चर्चा चल रही है। अनित्य भावना में ही बताया गया कि सारा जगत जो तेरे भगवान आत्मा से भिन्न है, तेरे भगवान आत्मा के संयोग में जितने भी पदार्थ आए हैं वे सब क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। वे पदार्थ स्वयं में नित्य होंगे, पर तेरे साथ का संयोग अनित्य है, और दूसरे तेरे आत्मा में भी जो पर्याय पैदा होती हैं भी अनित्य हैं। माने संयोग अनित्य हैं और संयोग के लक्ष्य से होने वाले संयोगी भाव वे भी अनित्य हैं और तू स्वयं नित्य है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो नित्य नित्यात्मक है। यदि हम अकेली अनित्यता का चिंतन करें तो वो तो एकांगी चिंतन होगा, और एकांगी चिंतन से तो आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता है। ये दोनों पक्षों का चिंतन होना चाहिए ना। इसलिए भले ही उसका नाम अनित्य भावना हो, लेकिन उसमें अकेले अनित्यता का चिंतन नहीं है, संयोगों की पर्यायों की अनित्यता का चिंतन है और अपने स्वभाव की नित्यता का चिंतन है, तब जाकर के वो वस्तु का स्वरूप पूरा बनेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी अनित्यता, असरणता, असारता का जो चिंतन है अनित्य भावना में अनित्यता का, असरण भावना में असारता का, असरण भावना में असरणता का, संसार भावना में असारता का, ये जो चिंतन है वे उन संयोगों पर से जो तेरा एकत्व ममत्व है उसको तोड़ने के लिए है। तो जिसमें तू हमारा एकत्व ममत्व है उससे हम एकत्व ममत्व तोड़ लें, लेकिन एकत्व ममत्व के बिना तो है आत्मा रह नहीं सकता है, क्योंकि इसमें श्रद्धा नाम का गुण है जिसका काम है कि किसी ना किसी को निज रूप जरूर जानना मानना। तो फिर वो भी तो बताना चाहिए कि तेरा अपनत्व तो एकत्व तो किसमें होना चाहिए। तो कहते वो भगवान आत्मा जो नित्य है उसमें तुझे अपनापन करना चाहिए, यानी कहां से हटाना है। अकेली इतनी बात कहेंगे लेकिन कहां पहुंचना है ये बात नहीं कहेंगे तो चित्त वहां से हटेगा नहीं। हम किसी भी आदमी से कहेंगे तुम इतनी नौकरी करते हो लेकिन तुम तो कौन 10,000 रुपये में पड़े हो, तुम 1,00,000 रुपये महीने के आदमी हो, 10,000 कुछ नहीं है। कितनी बुराई करें और कहें कि तुम इस नौकरी से इस्तीफा दे दो तो कोई नहीं देगा कि भाई मैं तो 1,00,000 नहीं 5,00,000 का हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो कोई 11,000 देने वाला बताओ तो भाई मैं 10,000 छोड़ दूँ। क्यों ये छोड़ दूँ तुम्हारे कहने से, और फिर वो मिले नहीं तो अधर में लटक के रह जाऊँगा ना। ऐसे ही जो संयोग अनित्य हैं, असरण है, स्त्री पुत्र आदि, मकान, जायदाद, शरीर, अब इन सबको अपना मानना छोड़ दूँ, इनसे नाता तोड़ दूँ तो फिर मेरा कौन है वो बताओ नहीं तो क्या करें। तो कोई भी आदमी इतना मूर्ख नहीं है कि वो अगला ठिकाना जाने बिना पिछला ठिकाना छोड़ देगा। अगला पैर जब तक अच्छी तरह ना जम जाए तब तक पुराना पैर कोई हटाता नहीं है, समझदार आदमी। इसलिए हर भावना में एक पक्ष से हटाना है संयोग और संयोगी भावों से, तो दूसरा जो पक्ष आत्मा है उसमें उसे जमाना है, ले जाना है। इसलिए अनित्य भावना में भी संयोगों की अनित्यता का चिंतन होगा और भगवान आत्मा की नित्यता का, कि यहाँ से हटो और यहाँ लग जाओ, तब वो बात पूरी होगी। अनित्य नाम तो सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तूने उस नित्य को तो अभी तक पहचाना ही नहीं है, और इस अनित्य में ही इतना गहरा अपनापन तेरा बैठ गया है कि तुझे नित्य की बात सुनना ही पसंद नहीं है। तो तेरे चित्त में से जो अनित्य संयोग हैं उनकी महिमा घटे और उनमें विकल्पात्मक ज्ञान में ही परायापन आवे, तो तू उस नित्य की बात सुने और उसकी खोज में लगे। इसके लिए अनित्यता की मुख्यता से चर्चा की और नामकरण भी उसी के नाम से रखा। लेकिन बातें दोनों ही चिंतमन की जाती हैं। ऐसे ही असरण, ये पर्याय असरण है, और तू तो शरणभूत है ये जानना था, लेकिन हम ऊपर ऊपर से असरण भावना को सोचने वाले क्या सोचते हैं कि हम ही असरण हैं। उनने तो कहा था तेरे शत्रु असरण हैं, कि कोई नहीं बचा सकता, कि किसको, कि तेरे शत्रु को, समझ गया ना। और हमने मान लिया कि हमें कोई नहीं बचा सकता, तो बोलो ये नहीं मानते कि हम सब, कि हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। कहते आत्मा तो मरता ही नहीं है, मरना तो इस शरीर के वियोग का नाम है, शरीर के बिखरने का नाम है, इन संयोगों के छूटने का नाम है। तो ये तो शरीर असरण हुआ ना, कि ये बिखरेगा, ये संयोग असरण हुए ना। तो असरण कौन थे, कि जिनके चक्कर में हम उलझे थे, जिनमें हम फंसे थे, और हमने क्या समझ लिया कि मैं असरण हूं, मैं अनित्य हूं। क्यों अनित्य भावना और असरण भावना ये समझाने के लिए कही थी कि तू अपने को अनित्य और असरण मान। क्यों, कि अनित्य और असरण जो पदार्थ हैं उनसे तू अपने को पृथक जान, इसके लिए ये भावनाएं समझाई थी। और हम ये सोचने लगे हम क्या करें, मैं तो ये देश है दी आत्मा हूं, और मेरा तो भैया एक मिनट का ठिकाना नहीं है, ना मालूम मैं कब चल बसूं। क्यों, इसने स्वयं को अनित्य मान लिया, स्वयं को क्षणभंगुर मान लिया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, तो स्वयं को असरण मान लिया। तो क्या हो गया, कि जिस दुख से बचने के लिए ये बारह भावनाओं के चिंतमन की बात कही थी, वो गुण अनंत गुणा, वो जो दुख है वो अनंत गुणा हो गया। और ऐसी विचित्र बात है कि हम सब जैनी, ये बारह भावनाओं को मानने वाले, चिंतमन करने वाले, घंटों रोजाना बारह भावनाएं पढ़ते रहे, और उन बारह भावनाओं से पढ़ पढ़कर अपने दुख की थोड़ी वृद्धि ही की हमने, जो उसका उद्देश्य था कि पर से चित्त हटकर अपने पर आता तो वो तो आया नहीं, और हृदय की धड़कन और बढ़ गई कि मरना सबको एक दिन, हाय राम मरना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, आंखों में आंसू तो धारा। भाई हमने अपने दुख को बढ़ाया हमने, और जबकि वैराग्य भावना और बारह भावना का उद्देश्य होता है अपने दुख को कम करके और अपने चित्त में शांति पैदा करना। इसलिए बारह भावनाओं के चिंतन करने और पढ़ने के पहले उनकी चिंतन धारा का स्वरूप क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने में तो आपने जिंदगी का बहुत समय निकाला, मान लो रोजाना 15 मिनट आपने बारह भावना पढ़ने में लगाई, तो महीना भर में कितने हो गए, 7.5 घंटे, फिर बरस में कितने हो गए, और 60-65 बरस में कितने हो गए सेठी जी। तो इतना समय आपने उनको पढ़ने में लगाया, अब उसका 100वां हिस्सा भी समझने में लगा दो तो कल्याण हो जाए। ये तोटा रतन से कुछ होने वाला नहीं है, ये बारह भावना ऐसा पढ़ लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। संसार भावना में उन्होंने बताया कि संसार असार है। क्या संसार माने, इस संसार माने मोह राग देश के परिणाम, और ये मोह राग देश परिणाम रूपी गोंद से जो भी संयोग हमसे चिपके हैं, ये उनने तो इनको असार बताया था, और तूने अपने आत्मा को असार समझ लिया। उनने तो संसार भावना में इनको निरर्थक बताया था और तूने अपने शुद्ध स्वयं को ही निरर्थक समझ लिया कि तू तो स्वयं सारभूत पदार्थ है। इसे दोनों पक्षों का चिंतन चलता है, भले ही नाम उसका संसार भावना है उसमें संसार, लेकिन उसमें अपने स्वभाव का चिंतन भी है हर एक में। फिर एकत्व भावना में ये कहा कि तेरे को तू तो अकेला ही है, वो सारा सुख दुख जो भी मोक्ष है वो तेरे अकेले को ही प्राप्त होगा। तो हमने इस अकेलेपन में भी असहायपना देखा, और असहायपना है तो वो असहाय का अर्थ हमें सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हाय राम मेरा कोई सहायक नहीं है। क्यों? अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। उनने ये बात तुम्हें बहुत आनंद के लिए बताई थी, क्यों? और तुमने उसमें से दुख निकाला कि हाय राम मेरा कोई नहीं है। कल एक उदाहरण दिया था ना कि किसी ने तुम्हें बताया कि भाई तुम अपने पिता के इकलौती संतान हो, कहीं मेरे कोई भाई बहन ही नहीं है। ये नहीं है कि इसके चार भाई हैं, छह बहन हैं, ये इतने हाय राम मैं तो ऐसा लगा किसी मैं बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन तेरे को इसको बताया था कि तेरे जो चाचा के चार लड़के हैं ना, वो सगे चाचा के, और तुम अपने पिता का एक है, तो जितना हिस्सा मिलेगा तेरे चाचा को उसके चार हिस्से बढ़ जाएंगे और तेरे को आधा पूरा मिलेगा। तो ये आनंद के लिए बात थी और तूने उसमें से दुख निकाला। तो अकेलापन आनंद के लिए बताया था राजकुमार, और तुम अकेलेपन से भी घबराने लग गया। यानी एक एक जगह में गलती है। एक लोटा ऊंधा रखा जाता है तो उस पर रखे जाने वाले जितने भी लोटा होते हैं वे सब ओंधे ही रखे जाएंगे। मुरादाबादी लोटा हो और उन्हें रखना हो, घड़ा हो मिट्टी का, एक घड़ा रख दिया उस पर दूसरा घड़ा ओंधा ही रखा जा सकता है, सीधा रखेंगे तो गिर जाएगा। और पहला घड़ा यदि सीधा है तो सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। तो जब तक दृष्टि में से मिथ्यात्व तो नहीं हटा है, जब तक हमने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना है और संयोगों को अपना माना है, तब तक हमारे चिंतन की जो भी हम सोचेंगे उसमें से दुख ही पैदा होने वाला है। ये जो गाय का बछड़ा होता है ना, तो जब जो माँ का दूध पीता है तो दूध पीछे पीते वाले बछड़े के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, उन्हें पटावे बोलते हैं। इतने लंबे लंबे कीड़े होते हैं, आपने देखा। और वो क्या होता है कि जब वो अपनी माँ का दूध पीता है तो वे सब कीड़े इकट्ठे होकर उसके गले में आकर के यहाँ लग जाते हैं, और जितना भी वो दूध पीता है वो सब कीड़े पी जाते हैं। उसको तो कोई दूध मिलता नहीं है, और कीड़े उसके पेट में उसके शत्रु हैं ना, वे उसके दूध पीने से मोटे होते हैं और बछड़ा दुबला होता जाता है। तो घर का मालिक देखता है कि बछड़ा लगातार दुबला हो रहा है, तो मैं जरा दूध जितना देता हूं वो कम पड़ता है इसको, तो वो और ज्यादा दूध पिलाए। एक थन का दूध छोड़ने की बजाय दो का छोड़ दे, क्यों? कि जिससे कि कम से कम बछड़ा मोटा रहे। तो ज्यों ज्यों वो दूध ज्यादा पिलाता है त्यों त्यों उसके शत्रु मोटे होते हैं। होना क्या चाहिए कि जब तक पेट में कीड़े हैं तब तक दूध बंद करो और उसे दूसरे तरीके से खुराक पहुंचाओ, तो वे कीड़े मरेंगे ना। तो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि वो दूध जो बच्चा पीता है ना माँ का, तभी वो गले के पास आती हैं, तो बीच में से उठा करके एकदम कोई जहरीला पदार्थ उस बछड़े को पिला दिया जाता है, तो पीता है तो कीड़े उस धोखे में जो दूध आ रहा है पी जाते हैं, वो मर जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। कई दफे ऐसा अनाज जो कटीला होता है जिसे बोलते कांस, जब वो खा जाता है बछड़ा तो उससे वो अंदर में पटारें कट जाती हैं और मर जाती हैं। ऐसा इलाज लोग करते हैं किसान लोग। मैं उन किसानों के बीच में रहा हूं इसलिए मुझे सब मालूम है। तो अभी अपना जो है ना उल्टी मान्यता के कारण हम जितना जिनवाणी माता दूध पिलाती है वो सब हमारी उल्टी मान्यता रूपी जो कीड़े जो अंदर में वो पी के मोटे हो रहे हैं। उनने हमारा दुख दूर करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन बताया और 12 भावनाओं के चिंतन से हमारा दुख और बढ़ गया। ये हंसते खेलते जो चेहरे हैं ना ये और मुरझाए मुरझाए से रहने लग गए। कोई नहीं बचा पाएगा, मरना होगा भैया, संसार में दुख ही दुख है, अब हम क्या करें, वो सब अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा। क्यों? ये जो मैं आपको वस्तु का स्वरूप समझा रहा हूं 12 भावनाओं के माध्यम से, जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसा ही होने वाला है कि इन्हें के चिंतन से, जैसा कि चिंतन धारा तुम्हारी पहले से है कि ये अपने हैं और उनको अन्य तस्वण बताया जा रहा है, ख्याल में है ना, तो ये निश्चित रूप से तुम्हारे दुख में ही वृद्धि करने वाली है और उसका साक्षात फल हम बराबर इन 12 भावनाओं को बिना समझे पढ़ने वालों के चेहरे पर देख सकते हैं। कोई भी वह 12 भावनाओं का पाठ पढ़ रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर प्रफुल्लता कहीं भी देखने में नहीं आती है। कदाचित कोई उसका भाव नहीं समझते हो तो देखने में आ भी जाए, लेकिन जो अर्थ लिखा है वो जो भी उल्टा अर्थ समझते हैं यदि वो भाव पर ध्यान जाता है तो सबके चेहरों में एक उदासी आ जाती है। तो एक तो उसमें कमी ये है कि जो चिंतन की जो धारा है वो हमने वैसी ही 12 भावनाएं चुनी पढ़ने बोलने में कि जिनमें उन्हीं उन्हीं की मुख्यता थी, काय की उन पर्यायों की, और जो स्वभाव की बात थी वो हमारी समझ में नहीं आई। कि ये तो तेरे शत्रुओं को अनित्य बताया जा रहा है, ये तो तेरे उन संयोगों को असरण बताया जा रहा है, असार तो उनको कहा जा रहा है, ख्याल में है ना। वो तेरे को जो अकेलेपन की बात कही जा रही है वो अकेलापन तो तेरा सौभाग्य है। चक्रवर्ती की कुर्सी पे दो जने एक साथ नहीं बैठते हैं, क्यों जी? भरत जी चाहते अपन बाहुबली अपन दोनों मिलकर चक्रवर्ती बन जाते हैं तो चक्ररत्न स्वीकार करता? चक्रवर्ती अकेला होता है, तीर्थंकर अकेला, अरे 6 खंडे में चक्रवर्ती अकेला ही होता है, वो दो चक्रवर्ती कभी आपस में मिलते नहीं, आपने सुना? दो तीर्थंकर जो 6 खंड की विभूति में एक ही तीर्थंकर होता है एक समय में, भरत क्षेत्र में दो नहीं होते हैं और दूसरे क्षेत्रों में होते हैं तो वे आपस में मिलते नहीं कभी, ये अमिल मिलाप है, ख्याल में है ना। मोक्ष में जाता है जीव तो हमेशा अकेला ही जाता है, अकेला ही रहेगा अनंत काल तक, नारायण बनेगा तो अकेला, समझ गए ना। जितने भी महान उच्च प्रधानमंत्री बनेगा तो अकेला, दो आदमी मिलकर दो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, दो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, कलेक्टर तो 1000 एक साथ हो सकते हैं, क्यों? तो जितने जी बड़े पद लौकिक पद भी हैं वे सब अकेले ही होते हैं और तेरे को साथ चाहिए, इसका क्या मतलब है? तुझे तुझे चपरासी ही रहना है। ये लौकिक बड़े पद की बात भी नहीं है तो अलौकिक जो सिद्ध पद है उसकी बात क्या चलेगा? बस तो कहते थे अकेले की जो बात कही गई है ये तेरे सौभाग्य के लिए बताई थी कि तू फूल के कुप्पा हो जाना चाहिए था। ये जो हम 10-20 खिलौने लाए अपने घर में और 4 बच्चे हैं तो बच्चों के देख बेटा ये तेरे खिलौने लाए, तो पापा ये मेरे हैं? कहाँ तेरे, अकेले मेरे हैं ना, कि इसमें किसी दूसरे के तो नहीं है हिस्से? नहीं नहीं बेटा तेरे ही अकेले हैं, तो देखो आनंद का झरना आता कि नहीं? कि नहीं तू तो देख ले, तो फिर दूसरे के हैं और फिर कुछ दूसरे के हैं, कुछ उसको देना पड़ेंगे, कुछ उसको देना पड़ेंगे, क्यों? बोलो, तो बच्चा खुश होता है क्या, असंतुष्ट होता है। तो हम बच्चों से भी कह देते हैं, तेरे को अकेलेपन की जो बात बताई उससे तेरे को घबराहट पैदा होगी, तुझे साथ चाहिए, तू इस राजमहल का अकेला मालिक है। कि नहीं 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 चलेगा, क्यों? तो अकेलेपन की जो भावना है उससे तुझे आनंद आना चाहिए था ना। तो इस तरह से इन चार भावनाओं में कौन कौन सी, अनित्य, असरण, संसार और एकत्व भावना में ये बात बताने के बाद अब वो ये कहता है कि मैं अकेला ही हूं, कोई साथी नहीं है। तो साथी नहीं सही, पर हैं तो क्या है? कि रेल के डब्बे में मेरा बेटा अकेला बंबई गया है, कल गया था ना, क्यों बंबई अकेला गया है, लेकिन भीड़ तो थी ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि डब्बे में मेरे को अकेला ही बैठा था। चलो इतना नहीं, कोई साथी नहीं है, लेकिन संयोग तो है, इतने में भी संतोष होता है कि नहीं होता है, बोलो आपको, हमारी ऐसी वृत्ति है कि नहीं है, यानी किसी ना किसी तरीके से ये बाहर के संयोगी पदार्थों से जुड़ा रहना चाहता है। कि मैं तेरा कोई साथ नहीं दूंगा, कि मत देना, लेकिन साथ में रहना तो भले आदमी नहीं है, समझे? कि समय से फिर चलते हैं अपन सब, तो देखो भैया मैं मुझे भी ले चलो, कभी हम कौन रोकता है तुम्हें, तुम चलने को चलो ना, 55 फुट चौड़ा रास्ता पड़ा है, हम कौन होते हैं तुम्हें ले जाने वाले हो नहीं ले जाने वाले। कि नहीं नहीं साहब मैं अकेला तो नहीं जा सकता हूँ, कोई साथ तो होगा। देखो साथ साथ का मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कुछ करूंगा, मैं तो अपने को ही नहीं संभाल सकता हूँ, ये मेरा ही सामान मेरे से नहीं संभलता है। नहीं नहीं वो तो मैं अपना सब उठाऊंगा करूंगा, सुनना आपको मेरा कुछ नहीं करना है, क्यों? लेकिन कम से कम साथ तो रहना, कि संवेद करके जब चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो अपना एक किलो का बोझा नहीं पुसाता है, ख्याल में आया ना, एक किलो का बोझा हो तो वो भी अपन को नहीं पुसाता है। तुम्हारा मैं कुछ नहीं ले सकता हूं, कि नहीं नहीं तुम्हारा मेरा कुछ भी मत लेना, लेकिन अपन साथ साथ तो चलेंगे ना, समझ में आया ना, साथ मत देना लेकिन साथ रहना तो। तो अन्यत्व भावना में जाकर के फिर ये कहते हैं कि कभी साथ रहते ही नहीं, दो द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं, ये अन्यत्व भावना है क्या कि तुम कहते तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, क्या साथ रहेंगे? कि जब ये शरीर ही साथ नहीं है, कि जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, तो घर संपत्ति पर प्रगटे पर हैं परिजन लोय। कि हम क्या करें, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की ये मोटी वज्र की दीवार पड़ी है, इसलिए साथ रहने की बात भी कुछ बिल्कुल नक्की नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न हैं, उनका किस क्षेत्र में कौन कब रहेगा अनादि से अनंत काल तक का सब सुनिश्चित नक्की है। क्या? तो जब रहेंगे 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 अलग हो जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे हम क्या करेंगे, क्या समझे? देखो साथ की भावना में क्या चक्कर पड़ता है, कि फिर वो जो तेज चलता है ना उसे मद्दा चलना पड़ेगा, जो मद्दा चलता है ना वो तेज चलना पड़ेगा, तो दोनों की चाल डिस्टर्ब हो जाएगी, समझे ना। साथ रहना इतने तक की बात भी आएगी तो दोनों नेचुरल नहीं रह पाएंगे, एक को तेज चलना पड़ेगा और एक को धीरे चलना पड़ेगा उसके साथ, साथ बनाए रखने के लिए। तो वो कहते भाई कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बात मेरे हाथ में नहीं है, कि अकेले ही तुझे जाना पड़ेगा और दो ध्रुवों के बीच में बद्ध की दीवार है, कोई जुड़ान नहीं है, ये भिन्नता का ज्ञान कराते हैं अन्यत्व भावना में। इस तरह इन पांच भावनाओं में तेरे को पर से बिल्कुल पृथक बताकर ये बताते हैं कि पर पर तू अपनी दृष्टि को ले जाकर बेकार समय खराब कर रहा है, उससे कोई लाभ नहीं है, वहां से उपयोग को हटाकर तू अपने आत्मा पर ले आ तो तेरा कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो का लोग, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।